एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी पहली मेजबान।
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान। आज हम गोता लगा रहे हैं सूजन केन की एक बहुत ही दिलचस्प किताब में, बिटर स्वीट, हाउ सोरो एंड लॉन्गिंग मेक अस होल।
बिटर स्वीट मतलब खट्टा मीठा।
हाँ बिल्कुल। और ये किताब एक बड़ा सवाल पूछती है, क्या उदासी महसूस करना या किसी चीज के लिए तरसना ये वाकई कोई कमजोरी है या फिर इसमें कोई छुपी हुई ताकत है?
बिल्कुल, और ये सवाल आज के जमाने में तो बहुत ही मतलब बहुत जरूरी लगता है। नहीं,
हाँ जरूरी तो है।
चारों तरफ से एक अजीब सा दबाव है। खुश रहो, पॉजिटिव सोचो, हमेशा मुस्कुराते रहो। सुजन केन ने इसका नाम भी बड़ा सही दिया है, सकारात्मकता का अत्याचार, टिरनी ऑफ पॉजिटिविटी।
सही कहा, सकारात्मकता का अत्याचार। ऐसा लगता है मानो उदास होना या किसी चीज के लिए तरसना ये तो आजकल जैसे कोई गुनाह हो गया हो।
हाँ, जैसे कुछ गलत कर रहे हो हम।
हाँ, कीन की किताब हमें उन भावनाओं को जिन्हें हम अक्सर दबाने की कोशिश करते हैं उन्हें फिर से समझने का एक नया नजरिया देती है। तो शुरू करने से पहले सुजन केन के बारे में थोड़ा जान ले।
हाँ हाँ जरूर। सुजन केन कोई नया नाम तो नहीं है। बहुत से लोग उन्हें उनकी पिछली सुपरहिट किताब से जानते होंगे, क्वाइट, द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स।
हाँ वो तो बहुत ही कमाल की किताब थी।
बिल्कुल, उस किताब ने तो वाकई दुनिया भर में अंतर्मुखी लोगों के बारे में जो सोच थी उसे काफी हद तक बदल दिया था।
सही है।
और केन की अपनी बैकग्राउंड भी दिलचस्प है। प्रिंसटन से पढ़ी हैं, हार्वर्ड लॉ स्कूल भी गईं, पहले कॉर्पोरेट लॉयर थीं।
अच्छा, लॉयर थी फिर राइटर बनी।
हाँ, फिर उन्होंने लिखने का रास्ता चुना, और उनका अंदाज भी खास है ना?
हाँ बिल्कुल। वो सिर्फ एक ही फील्ड जैसे साइकोलॉजी उसी तक सीमित नहीं रहती, वो तो मतलब न्यूरोसाइंस, फिलॉसफी, आर्ट, हिस्ट्री, यहाँ तक कि धर्म ग्रंथों से भी चीज़ें निकाल लाती हैं। और बिटर स्वीट में ये बात और भी खास इसलिए लगती है क्योंकि वो खुद मानती हैं कि उनका स्वभाव भी थोड़ा बिटर स्वीट है।
अच्छा, मतलब वो खुद भी खुशी और गम दोनों को बहुत गहराई से महसूस करती हैं।
हाँ कुछ ऐसा ही। और इसी वजह से उनकी बातों में एक एक सच्चाई, एक ईमानदारी सी लगती है।
मतलब वो सिर्फ किताबी बातें नहीं कर रही हैं ना, वो अपने अनुभव से भी जोड़ रही हैं।
बिल्कुल। और उनकी वो जो क्वाइट रेवोल्यूशन प्लेटफॉर्म है या उनके टेड टॉक्स हैं,
हाँ, लाखों लोगों ने देखे हैं वो।
हाँ वो दिखाते हैं कि वो मुश्किल आइडियाज को भी कितनी आसानी से समझा सकती हैं। शायद उनका वो जो लॉ का बैकग्राउंड है,
हाँ, उससे विश्लेषण करने की क्षमता आती होगी।
बिल्कुल। और उनका अंतर्मुखी स्वभाव उन्हें शायद ये समझने में मदद करता है कि ये सामाजिक दबाव कैसे काम करते हैं।
सही बात है। तो चलिए अब आते हैं इस किताब बिटर स्वीट पर। इसका इसका मुख्य विचार क्या है, क्या कहना चाहती है ये किताब?
देखिए, किताब का सबसे बड़ा और शायद सबसे चौंकाने वाला विचार यही है कि जिसे हम अक्सर कमजोरी समझते ना,
जैसे
जैसे उदासी महसूस करना या किसी चीज के लिए बहुत तरसना या ये एहसास कि जिंदगी कितनी छोटी है, पल पल बीत रही है।
हाँ, ये सब तो नेगेटिव भावनाएं मानी जाती हैं।
हाँ आमतौर पर कीन कहती हैं कि ये असल में हमारी ताकत हो सकती हैं। यही भावनाएं हमें ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा हमदर्द और जिंदगी से ज्यादा गहराई से जुड़ा हुआ बना सकती हैं।
अरे वाह, ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। मतलब पश्चिम की उस सोच से एकदम अलग, जो कहती है बस खुश रहो, सब ठीक है।
हाँ सीधे सीधे टक्कर देती है उस सोच को। तो ये सिर्फ ये नहीं कह रही कि उदास होना ओके है,
बल्कि
ये कह रही है कि ये जरूरी हो सकता है। किताब का मकसद है इस बिटर स्वीट स्वभाव को समझना और शायद उसकी कद्र करना।
अच्छा, तो ये बिटर स्वीट स्वभाव होता कैसा है, मतलब इसके लक्षण क्या हैं?
इसमें सुंदरता और दुख दोनों के लिए गहरी संवेदनशीलता होती है। जीवन कितना क्षणभंगुर है, कितना टेम्प्रेरी है, इसका बहुत तेज एहसास होता है। और अक्सर सुख और दुख को एक साथ महसूस करने की प्रवृत्ति होती है। केन का तर्क है कि ये स्वभाव न सिर्फ नॉर्मल है बल्कि इंसान की क्रिएटिविटी, उसकी स्पिरिचुअलिटी और सच्चे रिश्ते बनाने के लिए शायद जरूरी भी है।
ये सुनकर तो कई लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
हाँ हाँ
मतलब हर वक्त वो खुश दिखने का जो बोझ है,
हाँ हाँ बिल्कुल,
वो बोझ उतर सकता है।
किताब हमें उस बोझ से आजाद करती है और कहती है कि अरे भाई, उदासी में भी तोहफे छिपे हो सकते हैं।
वो ये सवाल पूछती है, हम अपने दर्द को, अपनी चाहत को, अपनी नश्वरता के एहसास को कैसे बदल सकते हैं, खूबसूरती में, जिंदगी के मायने में, कुछ बेहतर करने की प्रेरणा में।
मतलब एक तरह से परफेक्ट इम्परफेक्शन को अपनाने की बात है।
हाँ बिल्कुल, संपूर्ण अपूर्णता, जीवन जैसा है अपनी कमियों और खूबियों के साथ, उसे गले लगाना।
और इसका दायरा भी काफी बड़ा लगता है, ये सिर्फ साइकोलॉजी की किताब नहीं है जैसा आपने कहा।
नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें आपको साइकोलॉजी मिलेगी, न्यूरोसाइंस भी है, मतलब दिमाग कैसे काम करता है इस मामले में, फिर फिलोसफी है, संगीत, साहित्य, स्पिरिचुअलिटी, सब कुछ है।
बाप रे।
हाँ, और ये देखती है कि ये बिटर स्वीट नजरिया हमारे रिश्तों पर क्या असर डालता है, बच्चों की परवरिश पर क्या असर डालता है, हमारी क्रिएटिविटी पर, यहाँ तक कि हम कैसे लीडर बनते हैं उस पर भी।
तो ये मतलब हर किसी के लिए?
हाँ, कह सकते हैं हर उस इंसान के लिए जो खुद को थोड़ा ज्यादा संवेदनशील पाता है, या जो बस इंसानी जज्बातों की पूरी रेंज को समझना चाहता है। ये हमारी बनी बनाई सोच पर सवाल उठाती है, मेंटल हेल्थ के बारे में, सक्सेस के बारे में, खुशी के बारे में।
चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, किताब के अलग अलग हिस्सों में क्या खास बातें हैं। पहला हिस्सा, जैसा आपने बताया, दुख और चाहत पर है। अध्याय एक में बिटर स्वीट को डिफाइन किया गया है।
हाँ, केम यहाँ बताती हैं कि बिटर स्वीट स्वभाव वाले लोग जीवन के गुजरते पलों को, उसकी क्षणभंगुरता को बहुत गहराई से महसूस करते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें खूबसूरती की भी बहुत कद्र होती है।
खूबसूरती
जैसे
जैसे
कोई बहुत सुंदर संगीत सुन लिया, या कोई नज़ारा देख लिया, या कोई कलाकृति, वो चीज़ें उन्हें बहुत छूती हैं। इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? शायद बहुत ज़्यादा संवेदनशील होना, कभी कभी बिना किसी खास वजह के उदास महसूस करना, खूबसूरती से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाना, और जिंदगी के गहरे मतलब की तलाश में रहना।
और क्या इसका कोई कोई वैज्ञानिक आधार भी है? दिमाग वगैरह में कुछ अलग होता है?
हाँ, कुछ शुरुआती रिसर्च इस तरफ इशारा करती है। न्यूरोसाइंस बताता है कि ऐसे लोगों के दिमाग की एक्टिविटी, खासकर वो हिस्से जो सहानुभूति, एम्पथी और भावनाओं को समझने, इमोशनल प्रोसेसिंग से जुड़े हैं, उनमें थोड़ी अलग हो सकती है।
अच्छा।
और दिलचस्प बात यह है कि जहाँ पश्चिमी कल्चर इसे अक्सर एक प्रॉब्लम या मतलब बीमारी की तरह देखता है।
हाँ, ठीक करो इसे।
हाँ,
वही केन कहती हैं कि ये शायद विकास के क्रम में बना एक फायदेमंद गुण हो सकता है, एवोल्यूशनरी अडैप्टेशन। उन्होंने संगीतकार लियोनार्ड कोहेन का उदाहरण भी दिया है।
हाँ, उनका संगीत तो बिल्कुल इसी फीलिंग का निचोड़ है।
बिल्कुल, लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये जो रोजमर्रा की उदासी होती है और जो क्लिनिकल डिप्रेशन होता है, या ये बिटर स्वीट मिजाज हैं, इनमें फर्क है।
हाँ, ये फर्क समझना जरूरी है। और इस स्वभाव का एक और अहम हिस्सा है चाहत, लॉन्गिंग, तरसना। अध्याय 2 इसी के बारे में है। हम क्यों तरसते हैं?
ये बड़ा गहरा सवाल है। केन इसकी जड़ें टटोलती हैं हमारे विकास में, हमारे मनोविज्ञान में। शायद इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं अकेलेपन के एहसास से है, या बिछड़ने के भाव से। लेकिन यहां बात सिर्फ किसी कमी की नहीं है। कई दार्शनिक और धार्मिक परंपराएं हैं, जैसे सूफी, बौद्ध, ईसाई रहस्यवादी, वो चाहत को कोई समस्या नहीं मानते।
अच्छा, तो क्या मानते? वो इसे इंसान होने का एक जरूरी हिस्सा मानते हैं। ये वो चिंगारी है, वो अंदरूनी खिंचाव है जो हमें रचने, खोजने और मतलब ऊपर उठने के लिए प्रेरित करता है।
और शायद इसीलिए हम उदास संगीत या आर्ट की तरफ खिंचते हैं।
हाँ, शायद ऐसा संगीत या कला हमें एक तरह का सुकून देती है ना? हमें लगता है कि कोई हमारी भावनाओं को समझ रहा है।
कनेक्शन महसूस होता है।
हाँ, कुछ रिसर्च ये भी कहती है कि इससे प्रोलैक्टिन जैसे हार्मोन निकलते हैं जो आराम का एहसास कराते हैं, या शायद ये हमें हमारी साझा इंसानियत का एहसास कराता है कि भाई, दुख और चाहत सिर्फ हमारे नहीं है, ये सबके जीवन का हिस्सा है।
ये बात तो है। अच्छा, किताब का दूसरा भाग जेनेटिक्स, न्यूरोसाइंस और सांस्कृतिक इतिहास को जोड़ता है। अध्याय 3 और 4 में जीव विज्ञान और दिमाग की बातें हैं।
हाँ, यहाँ केन जेनेटिक पहलू को भी छूती हैं। वो बताती हैं कि कुछ जीन होते हैं, जैसे सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर जीन, जो हमारी संवेदनशीलता के लेवल से जुड़े हो सकते हैं। और वो एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट लाती हैं, विभेदक संवेदनशीलता, डिफरेंशियल ससेप्टेबिलिटी।
विभेदक संवेदनशीलता, ये क्या है?
इसका मतलब है कि कुछ लोग माहौल के अच्छे और बुरे दोनों तरह के असर के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। मतलब अगर माहौल अच्छा है तो वो बहुत खिलेंगे, लेकिन अगर माहौल मुश्किल है तो उन्हें ज्यादा दिक्कत हो सकती है।
अच्छा, तो ये डबल एज स्वॉर्ड जैसा हुआ?
हाँ, कह सकते हैं। और दिमाग की बात करें तो कुछ हिस्से, जैसे एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स और इंसुला, जो सहानुभूति और भावनाओं से जुड़े हैं, इन लोगों में ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं।
और क्या दिमाग खूबसूरती या रिश्तों पर भी अलग तरह से रिएक्ट करता है?
हाँ, इस पर भी बात है। और एक और अहम पॉइंट ये है कि यही संवेदनशीलता, जहाँ एक तरफ क्रिएटिविटी से जुड़ी हो सकती है, वहीं दूसरी तरफ मूड डिसऑर्डर का खतरा भी शायद बढ़ा सकती है। और एक और बहुत गहरा विचार है विरासत में मिले दुख का, एपिजेनेटिक्स।
एपिजेनेटिक्स मतलब
ये विचार कि कैसे हमारे पुरखों के जो अनुभव थे, उनके जो ट्रॉमा थे, वो हमारे जीन के काम करने के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं बिना हमारे डीएनए को बदले। ये बहुत बहुत सोचने वाली बात है।
हाँ, ये तो बहुत गहरा है। अच्छा, और फिर अध्याय 5 और 6 हमें इतिहास में ले जाते हैं। ये बिटरस्वीट भावनाओं को अलग अलग कल्चर ने कैसे देखा है।
यहाँ एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखता है। पुरानी सभ्यताएं और ज्ञान परंपराएं जैसे बौद्ध धर्म में दुख की समझ है, या यूनानी फिलॉसफी है, या यहूदी ईसाई रहस्यवाद, या अक्सर इन खट्टी मीठी भावनाओं को जैसे दुख है, नश्वरता का एहसास है, इनको कमजोरी नहीं मानते थे।
तो क्या मानते थे?
ज्ञान और समझ का रास्ता मानते थे। लेकिन आज का जो पश्चिमी नजरिया है, खासकर अमेरिकन कल्चर, वो इसे अक्सर बीमारी या कुछ ठीक करने लायक चीज मानता है।
लेकिन बीच में वो रोमांटिक दौर भी तो आया था यूरोप में।
बिल्कुल, 18वीं-19वीं सदी में रोमांटिक आंदोलन, जैसे कवि वर्ड्सवर्थ, कीट्स या संगीतकार चोपिन, उन्होंने भावनाओं को, प्रकृति की सुंदरता को, उदासी को, उसे गले लगाया। उन्होंने तर्क के ऊपर भावना को रखा। लेकिन फिर औद्योगिक क्रांति हुई, पूंजीवाद आया, सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री का जोर बढ़ा, और धीरे धीरे वो सकारात्मकता का अत्याचार हावी होता गया। हर हाल में खुश दिखो, कामयाब दिखो, परफेक्ट दिखो।
समझिए, तो ये एक तरह से कल्चरल शिफ्ट है।
हाँ। अच्छा, अब किताब का तीसरा भाग इन विचारों को क्रिएटिविटी, रिश्तों और बदलाव से जोड़ता है। अध्याय 7 और 8 क्रिएटिविटी पर है। यहाँ उदासी और क्रिएटिविटी का क्या कनेक्शन बताया गया है?
यहाँ घायल मरहम लगाने वाले वुंडेड हीलर का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है।
घायल मरहम लगाने वाला?
हाँ, मतलब वो लोग जो अपने जख्मों से, अपने दर्द से गुजरते हैं और फिर उसी अनुभव को अपनी कला में, अपने लेखन में, संगीत में या दूसरों की मदद करने में बदल देते हैं।
अच्छा, जैसे?
इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है। अब्राहम लिंकन, वो अपने डिप्रेशन से जूझते थे। माया एंजेलो, उन्होंने अपने मुश्किल बचपन को कितनी ताकतवर कविताओं और कहानियों में बदला। और अनगिनत कलाकार, लेखक। और संगीत का तो खास जिक्र है।
हाँ, संगीत को तो चाहत की जुबान ही कहा गया है।
बिल्कुल, कभी सोचा है कि वो जो माइनर कीज में बनी धुनें होती हैं या थोड़ा अधूरा सा लगने वाला संगीत, वो हमें क्यों इतना छू जाता है?
हाँ, उसमें एक अजीब सी कशिश होती है।
न्यूरोसाइंस भी इसे समझने की कोशिश कर रहा है। बाग से लेकर आज के सिंगर सॉन्ग राइटर, और बार बार लियोनार्ड कोहेन का जिक्र आता है। उनका संगीत तो जैसे इसी बिटर स्वीट एहसास का निचोड़ है।
बिल्कुल। अच्छा, और रिश्तों और पेरेंटिंग के बारे में क्या? अध्याय 9 और 10।
प्रेम संबंधों में बिटरस्वीट स्वभाव वाले लोग बहुत गहरे और इंटेंस हो सकते हैं, लेकिन उनमें शायद खोने का डर या अटैचमेंट से जुड़ी चिंताएं भी थोड़ी ज्यादा हो सकती हैं। तीन संवेदनशील बच्चों की परवरिश पर भी बात करती हैं कि कैसे उनके इस स्वभाव को पहचानें, उनकी खास प्रतिभाओं को निखारें, और सबसे जरूरी, उन्हें अपनी तीव्र भावनाओं को संभालना सिखाएं, जिसे इमोशनल रेगुलेशन कहते हैं।
ये पेरेंट्स के लिए काफी मददगार हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि वो लीडरशिप में भी बिटर स्वीट गुणों की बात करती हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? लीडर तो पॉजिटिव और स्ट्रांग होना चाहिए ना।
हाँ, ये पारंपरिक सोच से अलग है। केन कहती हैं कि सहानुभूति, प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी और मुश्किल वक्त में सही के लिए खड़े होने का जो नैतिक साहस होता है,
हाँ,
ये गुण बिटर स्वीट लीडर्स में ज्यादा पाए जा सकते हैं। ये उस लीडर के मॉडल को चुनौती देता है जिसे हमेशा सुपर पॉजिटिव और एकदम परफेक्ट दिखना होता है।
ये तो बिल्कुल नई बात है। और आखिर में अध्याय 11 और 12 बदलाव और रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन पर है। दुख को बदला कैसे जा सकता है?
ये अध्याय इस बात पर फोकस करते हैं कि कैसे मुश्किल अनुभव, यहां तक कि ट्रॉमा भी, हमें ज्यादा समझदार, ज्यादा दयालु और मतलब व्यक्तिगत रूप से विकसित बना सकता है। इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहते हैं।
पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ मतलब ट्रॉमा के बाद विकास।
हाँ, और इसमें ध्यान, मेडिटेशन, आर्ट थेरेपी जैसी तकनीकें मदद कर सकती हैं। अकेले नहीं बल्कि एक कम्युनिटी के साथ जुड़ना भी बहुत जरूरी है। और मौत का ख्याल ये डराने के बजाय हमें ये राह दिला सकता है कि जिंदगी छोटी है, इसलिए जो सच में मायने रखता है उस पर ध्यान दे। और फिर से लीडरशिप में इमोशनल इंटेलिजेंस और नैतिकता की ताकत पर जोर दिया गया है।
वाह, ये तो वाकई बहुत बहुत गहरी और फैली हुई चर्चा है इस किताब में। अगर हमें कुछ मुख्य संदेशों को समेटना हो तो वो क्या होंगे, सबसे जरूरी टेकअवेज?
मेरे ख्याल से पहला और सबसे जरूरी सबक तो यही है, संवेदनशीलता कमजोरी नहीं, ताकत है। ये किताब हमारी उस सोच को पलट देती है कि भई ज्यादा महसूस करना एक खामी है।
हाँ, अक्सर यही माना जाता है।
पकीन दिखाती हैं कि यही संवेदनशीलता हमें दूसरों को बेहतर समझने, कुछ नया रचने और गहरे रिश्ते बनाने में मदद करती है। हमें सोचना चाहिए हमारे अपने समाज में, भारत में, क्या हम गहरी भावनाओं या संवेदनशीलता को अक्सर मतलब नज़रअंदाज कर देते हैं या कमजोरी मान लेते हैं।
सोचने वाली बात है। और दूसरा अहम मुद्दा क्या होगा?
दूसरा है सकारात्मकता के अत्याचार की निरर्थकता। हर वक्त खुश रहने या दिखने का जो दबाव है वो हमें अंदर से खोखला कर सकता है।
हाँ, वो एक मुखौटे जैसा हो जाता है।
बिल्कुल, और ये हमें मुश्किल भावनाओं का सामना करने और उनसे सीखने से रोकता है। असली मजबूती या लचीलापन, रेजिलियंस, जज्बातों को दबाने से नहीं आता, वो उन्हें स्वीकार करने और उनसे गुजरने से आता है। यहाँ भी सवाल उठता है, क्या हमारे समाज में भी परफॉर्म करने का, हमेशा सब ठीक है दिखाने का दबाव बहुत ज्यादा है?
शायद है। तीसरा पॉइंट,
तीसरा, दुख और चाहत की रचनात्मक शक्ति। कैसे जिंदगी की मुश्किलें, कमियां या किसी चीज के लिए वो जो गहरी तड़प होती है वो हमें कुछ नया बनाने की प्रेरणा दे सकती है।
हाँ, जैसे वो घायल मरहम लगाने वाली बात थी।
हाँ, इतिहास गवाह है, कई महान कलाकार, लेखक, विचारक अपने दर्द से ही ताकत पाते हैं। वो चाहत जिसे जर्मन में सेंजुख्त कहते हैं, एक ऐसी मीठी सी कसक किसी अनदेखी चीज के लिए, ये एक आध्यात्मिक खोज या मोटिवेशन बन सकती है। हमारी लोक कथाओं, गानों, शायरी में उदासी और चाहत का कितना गहरा रंग है ना?
बिल्कुल है।
चौथा विचार थोड़ा और गहरा था, विरासत में मिला दुख और भावनात्मक विविधता, वो एपिजेनेटिक्स वाली बात।
हाँ, ये सोचना कि हमारे पुरखों के अनुभव, उनके अनकहे दुख भी हम तक पहुंच सकते हैं, ये बहुत मायने रखता है।
ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया में अलग अलग तरह के स्वभाव होते हैं और हमें सबकी मतलब अलग अलग तरह की भावनाओं को अहमियत देने की जरूरत है। क्या हम कभी अपने परिवार में भावनाओं के अनकहे पैटर्न पर गौर करते हैं?
करना चाहिए शायद। और पांचवा,
बल्कि ये हमें जगा सकता है कि हम उन चीजों पर ध्यान दें जो वाकई जरूरी हैं, रिश्ते, प्यार, सीखना, दुनिया में कुछ अच्छा करना।
हाँ, प्रायोरिटी सेट करने में मदद करता है।
बिल्कुल, सुख और गम अलग नहीं है, वे एक ही सिक्के के पहलू हैं, एक ही जिंदगी के रंग हैं। भारतीय दर्शन में भी तो जीवन की क्षण भंगुरता, इम्परमनेंस और उससे मिलने वाली सीख पर बहुत जोर है।
सही कहा। अच्छा, इस किताब में कुछ पंक्तियां या विचार ऐसे हैं जो जहन में रह जाते हैं। एक जो शायद पूरी किताब का निचोड़ है, बिटर स्वीट, ये पहचान है कि उजाला और अंधेरा, जन्म और मृत्यु, कड़वा और मीठा हमेशा साथ चलते हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए?
मतलब सीधा सा है पर गहरा है। जिंदगी विरोधाभासों से भरी है और हमें उन्हें अलग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। खुशी है तो गम भी होगा, जन्म है तो मृत्यु भी होगी, इन दोनों को एक साथ स्वीकार करने में ही समझदारी है। यह हमें रियलिटी के ज्यादा करीब लाता है ना?
हाँ, एक और विचार चाहत के बारे में है। हम आमतौर पर चाहत को अपने आप में सुंदर नहीं मानते, लेकिन ये है। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, नहीं? चाहत सुंदर कैसे?
हाँ, अजीब लग सकता है क्योंकि हम अक्सर चाहत को किसी कमी या दुख से जोड़ते हैं, लेकिन केन कहती हैं कि ये हमारी वो काबिलियत है जो हमें मौजूदा हालात से आगे देखने, किसी बेहतर, गहरे या ज्यादा खूबसूरत चीज की कल्पना करने में मदद करती है।
अच्छा,
ये वो अंदरूनी खिंचाव है जो हमें आगे बढ़ाता है, कुछ रचने पर मजबूर करता है। ये अपने आप में खूबसूरत मानवीय अनुभव है, सिर्फ एक कमी नहीं है।
ये नया नजरिया है और एक और बहुत शक्तिशाली विचार है जो उन भावनाओं को नया मतलब देता है जिन्हें हम बुरा मानते हैं। हम दुख उठाते हैं ताकि प्यार कर सकें, हम तरसते हैं ताकि रच सकें, हम शोक करते हैं ताकि जुड़ सकें।
अरे वाह, ये तो कमाल का नजरिया है। ये कह रहा है कि हमारे सबसे मुश्किल अनुभव असल में हमें जिंदगी की सबसे कीमती चीजों से जोड़ते हैं।
कैसे?
दुख हमें सहानुभूति सिखाता है जिससे हम बेहतर प्यार कर पाते हैं, चाहत हमें प्रेरणा देती है जिससे हम कुछ नया रचते हैं, और शोक, किसी को खोने का गम, हमें याद दिलाता है कि हमने किसे प्यार किया और हमारे लिए क्या मायने रखता है, जिससे हम दूसरों से और खुद से ज्यादा जुड़ते हैं।
ये तो बहुत बहुत पॉजिटिव तरीके से देखने का तरीका है इन मुश्किल भावनाओं को।
बिल्कुल, और आखिर में एक व्यवहारिक सी लगने वाली बात जो डेनिश लेखिका इसैक डिनेसन की है, लेकिन कैन उसे भावनाओं से गुजरने के तरीके के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। किसी भी चीज का इलाज खारा पानी है, पसीना, आंसू या समुद्र।
पसीना, आंसू या समुद्र, इसका क्या मतलब?
क्या खूब कहा है, ये एक मेटाफर है, मतलब भावनाओं को अंदर दबा कर मत रखो, उन्हें बहने दो।
अच्छा,
मेहनत करो, काम करो, पसीना बहाओ, अगर दुख है तो रो लो, आंसू बहने दो, उन्हें रोको मत, या फिर प्रकृति के पास जाओ, जैसे समंदर किनारे, वो विशालता हमारे दुखों को छोटा महसूस कराती है। तीनों ही तरीके हमें भावनाओं को प्रोसेस करने और हल्का महसूस करने में मदद करते हैं।
ये तो बहुत अच्छी सलाह है। तो ये सब गहरे विचार हैं, इन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं, कुछ प्रैक्टिकल तरीके?
हाँ बिल्कुल, सबसे पहली बात तो ये कि हम अपनी भावनाओं को पहचानना और स्वीकार करना सीखें, खासकर उन भावनाओं को जिन्हें हम नेगेटिव मानकर टाल देते हैं, जैसे उदासी, चिंता या किसी चीज की कमी महसूस होना।
मतलब इग्नोर ना करें?
हाँ, केन इसे इमोशनल ग्रैन्युलैरिटी कहती हैं, यानी अपनी भावनाओं को सिर्फ अच्छा या बुरा कहने के बजाय उन्हें और बारीक स्तर पर समझने की कोशिश करें, जैसे मैं निराश हूँ, मैं थोड़ा उदासीन महसूस कर रहा हूँ, या मुझे किसी चीज की कमी खल रही है।
और फिर?
फिर उन्हें दबाने के बजाय शायद लिखकर या पेंटिंग करके या संगीत सुनकर या बनाकर किसी तरह से व्यक्त करने की कोशिश करें। अपनी संवेदनशीलता को कमजोरी नहीं बल्कि एक तरह की भावनात्मक समझदारी, इमोशनल इंटेलिजेंस माने।
और रिश्तों में इन विचारों का क्या मतलब है?
रिश्तों में ईमानदारी बहुत जरूरी है। अपनी भावनात्मक जरूरतें क्या हैं उन्हें खुलकर बताएं और दूसरों की भावनाओं को भी समझने की कोशिश करें, खासकर अगर हमारे आसपास कोई बिटर स्वीट स्वभाव का है, उसकी संवेदनशीलता को समझें।
और अगर पेरेंट्स हैं तो?
तो अपने बच्चों की हर तरह की भावनाओं को मान्यता दें, उन्हें सिखाएं कि उदास होना या गुस्सा आना भी ठीक है, ये नॉर्मल है, और उन्हें इन भावनाओं से हेल्दी तरीके से निपटना सिखाएं, इससे वे ज्यादा लचीले बनेंगे, रिजिलिएंट।
और काम की जगह या समाज के स्तर पर कुछ कर सकते हैं?
हाँ, काम की जगह पर हमें ऐसे लीडर्स की कद्र करनी चाहिए जो सहानुभूति दिखाते हैं, जो असली लगते हैं, न कि सिर्फ नकली पॉजिटिविटी फैलाते हैं। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां लोग अपनी चिंताएं और भावनाएं बिना डर के जाहिर कर सकें।
ये तो जरूरी है।
और समाज के स्तर पर शायद हमें सतहीपन से आगे बढ़कर गहरे सच्चे रिश्ते बनाने वाले समुदाय बनाने पर जोर देना चाहिए, जहां लोग जैसे हैं वैसे ही स्वीकार किए जाएं, अपनी ताकतों और कमजोरियों के साथ।
इस पूरी बातचीत से आपके लिए सबसे अहम सीख या कोई ऐसी बात जो आपको चौंका गई हो क्या रही?
मेरे लिए सबसे बड़ी बात शायद यही है कि जिन चीजों को हमारी संस्कृति अक्सर कमजोरी या प्रॉब्लम मानती आई है, जैसे बहुत संवेदनशील होना या उदास महसूस करना या किसी चीज के लिए गहरी तड़प रखना, वो असल में हमारी सबसे बड़ी ताकतों में से हो सकती हैं।
हाँ, ये वाकई चौंकाने वाला विचार है।
हाँ, और यही चीजें हमें ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा हमदर्द और एक दूसरे से ज्यादा गहराई से जुड़ा हुआ बनाती हैं। ये सोच ये अपने आप में बहुत आजादी देने वाली लगती है।
और मेरे लिए सबसे पसंदीदा पहलू ये है कि ये किताब हमें हर वक्त खुश दिखने के उस भारी बोझ से मुक्त करती है। ये जिंदगी को उसकी पूरी जटिलता में, उसकी धूप और छांव, उसके मीठे और कड़वेपन के साथ अपनाने का एक तरह से न्योता है।
बिल्कुल,
ये याद दिलाती है कि दुख और खुशी दुश्मन नहीं है बल्कि एक ही तजुर्बे के दो पहलू हैं, और शायद इसी समझ में जिंदगी का असली मतलब छिपा है।
सही कहा। तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ने के लिए क्या कहेंगे?
शायद ये कि अगली बार जब उदासी या किसी चीज की तीव्र इच्छा महसूस हो तो उसे फौरन भगाने की कोशिश करने के बजाय एक पल रुककर खुद से पूछें, ये भावना मुझे क्या बताने या सिखाने की कोशिश कर रही है?
अच्छा सवाल है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।